प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने हमें इस बात का स्मरण दिलाया कलीसिया के माध्यम से कि हम एक अंग हैं और मसीह इस देह का सिर है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कलीसिया एक मंदिर है, मंदिर निर्माण की सामग्री, निर्माण विधि, निर्माण का अर्थ। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं, कर्ज में हैं, नौकरी के इंतजार में हैं, प्रत्येक के साथ हो, अपनी शांति उन्हें प्रदान करें, वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यह अध्याय वास्तव में अध्याय एक ही का भाग है। पौलुस ईश्वर के पुनरुत्थान के महान सामर्थ की चर्चा कर रहा है। अब हम देखेंगे कि यही वह सामर्थ है जिसने हमें मसीह में पुनर्जीवित किया, क्योंकि हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। इस काम में जो सामर्थ लगता है वह पुनरुत्थान का सामर्थ है। यही वह सामर्थ है जिसे परमेश्वर की अनेक संतान अनुभव करना चाहती है। फ्रांसीसी रिडली हावरगल ने अति सुंदर एवं सुशील शब्दों में इसे व्यक्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आज अनेक विश्वासियों के मन की प्रार्थना है। ओह, मुझे पुनरुत्थित जीवन शांत एवं निश्चल रूप से प्रदर्शित करने दे। ओह, मुझे निर्मूल वरदानों को बांटने दे। ओह, मुझे बहुतायत का जीवन जीने दे, क्योंकि तू ही जीवित है। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर मनुष्य को सामर्थ देने से पीछे हटता है। मेरे विचार में हम देख सकते हैं क्यों। परमेश्वर ने वर्षों तक मनुष्य को परमाणु शक्ति के ज्ञान से वंचित रखा। एक दिन मनुष्य ने इसे खोज निकाला और संसार में परिवर्तन आ गया। क्या हुआ? क्या संसार मनुष्य के निवास करने हेतु एक अद्भुत स्थान बन गया? नहीं, आप तो स्वयं जानते हैं कि यह भय का कारण बन गई, क्योंकि इससे संसार का सर्वनाश हो सकता है। आज मनुष्य खतरनाक हो गया है। यदि सोचे कि मनुष्य इसका विनाशकारी उपयोग नहीं करेगा तो यह हमारा भ्रम है। आज ऐसे मनुष्य हैं जो इसके दुरुपयोग से पीछे नहीं हटेंगे। भौतिक शक्ति के उपयोग द्वारा मनुष्य प्राण घातक हो गया है। मेरे विचार में परमेश्वर मनुष्य को सामर्थ देने के विषय में पीछे हटता है। तथापि इस पत्री में परमेश्वर के जिस सामर्थ का उल्लेख है वह प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों के जीवन में परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला सामर्थ है। वह उस मनुष्य को आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में ले जाएगा। यह सामर्थ संसार में मसीह के द्वारा दर्शाया गया है। आज प्रभु यीशु इस संसार में अपने आप को कलीसिया के द्वारा प्रकट करता है। कलीसिया परमेश्वर के मंदिर के रूप में अनेक परिप्रेक्ष्यों में पुराने नियम के मंदिर के तुल्य है, जो जंगल के मिलाप वाले तंबू का उत्तरकालीन रूप है। तुलना तो प्रकट है ही, परंतु विषमताएं सुबोध एवं असाधारण है। मंदिर या मिलाप वाले तंबू में जो लकड़ी काम में ली गई थी वह निर्जीव थी। इसी प्रकार कलीसिया का निर्माण करने में परमेश्वर ने मृतकों को लेकर कलीसिया को जीवित मंदिर बनाया। मंदिर और मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की महिमा का निवास स्थान था। कलीसिया पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। मंदिर और मिलाप वाला तंबू संस्कार पूर्ति और वर्ष प्रति वर्ष पाप बलि चढ़ाने के स्थान थे। कलीसिया प्रभु यीशु के एक ही बलिदान पर आधारित है, एक ऐसा बलिदान जिसके दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। कलीसिया में धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं है, यह एक कार्यकारी संस्था है जिसमें पवित्र आत्मा जीवित पत्थरों द्वारा विचरण करता है। मेरे मित्रों, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कलीसिया को विधियां नहीं दी हैं। कुछ का सोचना है कि आराधना में स्तुति गान, प्रार्थना पढ़ना, गीत गाना, वचन का सुनना आदि होना चाहिए, परंतु इसराइल के लिए यह अर्थहीन होता था। कलीसिया को तो ऐसी विधियां नहीं दी गई हैं। अब कोई पूछेगा, तब क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मुख्य बात तो यह है कि शब्दोच्चारण आज अनेकों के लिए अर्थहीन अभ्यास हो गया है। अभ्यास अर्थपूर्ण होना चाहिए। यदि उनका अर्थ निभाया जाए तो वे उचित हैं। अब कलीसिया मंदिर के अनुष्ठानों से युक्त ही नहीं या हाथों से बना मंदिर भी नहीं है। आज का प्रभावशाली सत्य यह है कि परमेश्वर व्यक्तिगत विश्वासियों में अंतर्वास करता है। प्रेरितों के काम के पुस्तक में हम देखते हैं 17 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे मित्रों, मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसराइल नहीं मानता था कि परमेश्वर मंदिर में समाएगा। मंदिर के समर्पण की प्रार्थना में सुलेमान ने कहा, पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय के 27 पद में, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? प्रत्येक दीक्षित इसराइली जानता था कि परमेश्वर मंदिर में एक संदूक में कैसे रहेगा। मुक्त विचारवादी कहते हैं कि उनका विचार परमेश्वर के विषय ऐसा ही था। मैंने एक महान प्रोफेसर को कहते हुए सुना कि इसराइलियों का परमेश्वर के विषय दृष्टिकोण अविकसित था कि परमेश्वर वाचा के संदूक में रहता था। मैं तो कहूंगा कि उस प्रोफेसर में बाइबल की समझ अविकसित थी। यदि वह पुराना नियम पढ़ता तो जान जाता कि इसराइल में परमेश्वर की धारणा ऐसी नहीं थी। परमेश्वर ने उनसे यह अवश्य कहा था कि वह उनसे भेंट करने मंदिर में आएगा। यही कारण था कि वे मंदिर में अनुष्ठान अर्पित करते और बलि चढ़ाते थे, परंतु कलीसिया के लिए आराधनालय में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, इसराइल के मंदिर में एक और अंतर है। आपको स्मरण होगा कि अन्य जातियां मन फिराकर वहां आ सकती थी, परंतु केवल अन्य जातियों के परिसर तक। आज यरूशलेम का होली सिटी पवित्र होटल हेरोदेश के युग के यरूशलेम का प्रतिरूप है। वह यीशु के युग का सा है। मंदिर में अन्य जातियों का परिसर बाई ओर बहुत दूर था। अन्य जातियां अधिक निकट नहीं आ सकती थी। यही कारण है कि पौलुस यहाँ कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा आपने, हम अन्य जाति अब बहुत निकट लाए गए हैं। और सच तो यह है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थान में हैं। इससे अधिक और आपको क्या चाहिए, क्या कहा जा सकता है। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे मंदिर निर्माण की सामग्री। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ध्यान दीजिए, जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तुम्हें भी जिलाया। नए नियम की मूल भाषा यूनानी में नहीं है, इसे केवल अर्थपूर्ण बनाने के लिए जोड़ा गया है। मैं मानता हूं कि यहां एक अर्थपूर्ण वाक्यांश की आवश्यकता थी और तुम्हें भी जिलाया गया अति उचित है। अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर अर्थात संसारिकता में या संसार के सिद्धांतों पर। यहां संसार का अभिप्राय पृथ्वी से नहीं है, इसका अर्थ है समाज, सभ्यता, जीवन शैली जो आज के संसार को स्वीकार्य है। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान हम मृतकों को लेकर शक्ति देता है। यही कारण है कि अनेक पंथ दीमकों के समान अति सक्रिय हैं और उसका परिणाम भी यही है, शैतान उन्हें शक्ति देता है। मुझसे लोग कहते हैं कि वे चमत्कार कर रहे हैं। मैं विवाद नहीं करूंगा, हो सकता है यह सच है। आज बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जाता है, परंतु कुछ बातें सच भी हो सकती हैं। यहां चमत्कार प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ है? शैतान धर्म शास्त्र में व्यक्त अनेक आश्चर्य कर्मों की नकल उत्पन्न कर सकता है। क्या मिस्र के जादूगर मूसा के आरंभिक चमत्कारों की नकल नहीं कर पाए? क्या वे नकल नहीं कर रहे थे? परंतु बाद के चमत्कारों की नकल करने में वे अयोग्य ठहरे। जब मनुष्य नया जन्म पाता है और परमेश्वर की निकटता में आता है, तब शैतान उसके समक्ष शक्तिहीन हो जाता है। परंतु आज वह सक्षम है कि मनुष्यों को भ्रमित करके, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके, उन्हें पथ भ्रष्ट कर दे। वह संसार की पूजा पद्धतियों में सामर्थी है। मेरे प्रिय मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मंदिर निर्माण के लिए मृतकों को चुना जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और क्रोध की संतान भी थे। आगे हम देखते हैं इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मेरे मित्रों, पद 1 से 7 तक 7 को अगर हम समझने के लिए लेते हैं तो यह आवश्यक है कि हम जानें कि ये 7 पद यूनानी भाषा में एक ही वाक्य है। आम यूनानी भाषा को समझना तो आसान है, परंतु यह वाक्य साहित्यिक है। इसका अर्थ है कि पौलुस उस युग की प्रचलित यूनानी भाषा से अधिक अच्छी यूनानी जानता था। हम देख चुके हैं कि अध्याय 1 से जुड़ा हुआ है। अध्याय 1 में पौलुस उद्धार की चर्चा करते हुए पद 19 में परमेश्वर के महान सामर्थ की चर्चा करता है। यही सामर्थ्य मृतक पापियों को जिलाता है। अब अध्याय 2 के पद 1 में वह कहता है, हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। वह वास्तव में आदम की मृत्यु के बारे में कह रहा है जो हम में आ गई। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में वह स्पष्ट कहता है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। जी हाँ, आदम के पाप ने हमें पतित मनुष्य की संतान बनाया और हम सब में आदम का स्वभाव आ गया। यह एक भ्रष्ट स्वभाव है जिसमें परमेश्वर के लिए झुकाव नहीं है। मैं जब अपने मन परिवर्तन के बारे में सोचता हूँ तो उसे एक चमत्कार ही मानता हूँ। परमेश्वर मेरे जैसे मनुष्य को कैसे उद्धार प्रदान कर सकता था? मेरे पिता सिद्धांतवादी थे और सत्यनिष्ठा के लिए वे पहचाने जाते थे, परंतु वह विश्वासी नहीं थे और कलीसिया विरोध भी करते थे। वह आराधनालय के द्वार में ही कभी कदम नहीं रखना चाहते थे, और मुझे भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं संडे स्कूल या जवानों की सभा में जाऊं। मेरे मित्रों, मैं उस दिन को स्मरण करता हूं जब परमेश्वर के दास पास्टर साहब ने मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को बोया और मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। मैं प्रत्येक अधिकार से बचने के लिए दूसरे शहर में भाग जाया करता था। वहां मेरी मित्रता एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने मुझे प्रभु के वचन के बारे में बताया, और बहुत ही कम उम्र में मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आज भी मुझे याद है वो दिन जब प्रभु ने मेरे जीवन में वो शांति और आनंद डाल दिया। आज वह मुझे शैतान के चंगुल से बचाता है, मुझे विजयी बनाता है। मैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की बातों के लिए मृतक था। उस समय किसी ने मुझे समझाया कि मुझे मसीह यीशु के द्वारा शांति मिल सकती है। यह कैसा अद्भुत था! मैं तो कहूंगा कि यह एक चमत्कार है। मैं तो परमेश्वर से दूर भाग रहा था क्योंकि मैं अपराधों और पापों में मरा हुआ था। जी हाँ, आदम तो उसी दिन आत्मिकता में मर गया था जिस दिन उसने परमेश्वर पर विश्वास त्याग कर उसकी आज्ञा तोड़ी। वह परमेश्वर से दूर हो गया और छिप भी गया। अब वह परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करता था। आज के प्राकृतिक मनुष्य की भी यही दशा है। यह मानना कि मनुष्य में आत्मिक चिंगारी है और वह परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है सर्वथा भ्रम है। जिस दिन आदम ने आज्ञा तोड़ी उसी दिन वह परमेश्वर के लिए मर गया, उसकी बातों के लिए मर गया। शारीरिक रूप से तो वह 900 वर्ष बाद मरा, परंतु उसने परमेश्वर के लिए ललकना या उसकी ओर अपने जीवन को लाना समाप्त कर दिया। वह परमेश्वर से अलग हो गया। मृत्यु मनुष्य को परमेश्वर से अलग ही तो कर देती है। शारीरिक मृत्यु आत्मा को देह से अलग कर देती है। हम आत्मा को अलग होते नहीं देख सकते, हम केवल मृतक शरीर को देखते हैं। इसी प्रकार आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से अलग होना है। पाप करने के बाद मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से तो जीवित था, परंतु वह आत्मिक मृत्यु में था। परमेश्वर से वह अलग था। उसने वही मृत्यु या मृतक स्वभाव अपनी संतान में पहुंचाया। केवल पवित्र आत्मा ही मनुष्य के विवेक को वर्तना हेतु प्रेरित कर सकता है, जो न आप कर सकते हैं और न ही मैं कर सकता हूं। केवल परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। मेरे मित्रों, मुझे एक बार ऐसी कलीसिया में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां महान प्रचारक सेवा कर चुके थे। मैं प्रशंसनीय काम करना चाहता था और परमेश्वर का महिमान्वन करना चाहता था। जब मैं रेडियो कक्ष से निकलकर प्रचार मंच पर जाता था तो यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं असहाय और निकम्मा हूं। मैं एक कब्रिस्तान में प्रचार करने जा रहा हूं क्योंकि यहां बैठे अनेक जन अपराध और पाप में मरे हुए हैं। हे प्रभु, यदि पवित्र आत्मा काम करे तो मैं सामर्थी हो जाऊंगा। केवल पवित्र आत्मा ही आवाज को मृतक तक पहुंचा सकता है और वे सुन सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से सहायक भेजने की प्रतिज्ञा की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:8 में वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। क्या आप जानते हैं हम एक कब्रिस्तान में रहते हैं, मनुष्य मृतक है, अर्थात शारीरिक रूप से तो हम जीवित हैं लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, उसे हम नहीं देखते हैं और उसे हम नहीं समझ पाते हैं, और सिर्फ पवित्र आत्मा ही इन आवाजों को हम तक पहुंचाता है। मेरे मित्र, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, पाप में मृतक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक जीवन जी रहे हैं। यदि आज भी आप आत्मा में मरे हुए हैं, एक मृतक व्यक्ति के समान हैं, पाप और अपराध में डूबे हुए हैं, इस बात को निश्चय करें और प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु, मैं वो जीवन जीना चाहता हूं, वो शांतिप्रिय जीवन जो आपके द्वारा प्राप्त होता है, आप मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करें। जब आप उससे मांगेंगे, निश्चय जाने कि वह आपको शांति और आनंद की भरपूरी देगा। आपके जीवन में वो उमंग आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर आज मुझे और आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और उससे कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है। गुनाहों